Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति।
स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, रिश्ते जो होते हैं वो एक नाजुक डोर की तरह होते हैं, जिसे अगर जोर से खींच लिया जाए तो वो टूट भी सकते हैं। साथ ही साथ रिश्तों को अगर आपको खूबसूरत बनाना है तो उसके अंदर में विश्वास को भरिए, उसके अंदर की जो मिठास है उसे कायम रखिए, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं बीके मनोरमा बहन। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो दीदी।
थैंक यू
दीदी। हमने पिछले एपिसोड में जाना कि विश्वास और मिठास, अगर ये दोनों हमारी ज़िंदगी में है तो हमारे रिश्ते खूबसूरत बन सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में लाना है, अभी भी बाकी है, जिससे हमारी ज़िंदगी आसान बन सके?
हमने जो चर्चा की थी वो मिठास को गुणग्राही बनने से लेकर की थी।
जी,
हम जितने जितने गुणग्राही होते जाते हैं
जी,
उतना उतना हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान का नज़रिया बनता जाता है
जी।
तो अगर हम उसके साथ विश्वास को कायम रखें, बहुत बड़ी चीज़ है विश्वास। आपको ज़िंदगी की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। यह विश्वास स्वयं में हो, जिसे दूसरे शब्दों में आत्मविश्वास कहा जाता है
जी,
यह विश्वास जगत नियंता में हो, जिसे परमात्मा विश्वास कहा जाता है, यह विश्वास हमारे अपने राष्ट्र के एकता और अखंडता में हो, जिसे राष्ट्रीयता कहा जाता है। तो विश्वास का बहुत बड़ा क्षेत्र है
जी।
और रिश्तों में विश्वास पैदा करने के लिए हमको ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बहुत चाहिए, क्योंकि विश्वास अगर टूट जाता है तो उसे दोबारा लाना
बड़ा ही मुश्किल,
बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल,
बहुत मुश्किल है। अथक परिश्रम से हम विश्वास प्राप्त करते हैं। कार्यालय के क्षेत्र में देखिए, एक कार्यालय अधीक्षक और एक नीचे के कर्मचारी के अंदर संबंधों में अगर विश्वास कायम हो गया तो बॉस के रूम से लेकर सारे कार्यालय की चाबी उस व्यक्ति के पास है। एक अटूट विश्वास है। कोई भी काम है वो कहता है मिश्रा को बुलाओ और दे दो,
सही,
शर्मा को बुलाओ और दे दो।
बिल्कुल,
बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस मिस्टर शर्मा।
करेक्ट,
ये है ना
जी।
तो वो विश्वास शर्मा जी ने या मिश्रा जी ने जीता कैसे? हर क्षण अपने को उपलब्ध कराकर, हर क्षण दिए गए कार्य को अंजाम देकर, हर क्षण थोड़ा परिश्रम करके, हर क्षण थोड़ा सा कार्य करने की तकनीकी को विकसित करके। तो जैसे कार्यालय में हमने अपने बॉस के साथ संबंधों में, रिश्तों में मिठास लाई विश्वास के आधार, हमें भी खुशी होती है कि सर हम पर बहुत बिलीव करते हैं। ऐसे ही घर में अगर हम चाहते हैं कि बड़ों का हमारे प्रति विश्वास कायम रहे, तो हम वो कार्य करेंगे जो हमारे खानदान की, हमारे परिवार की गरिमा को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने वाले हों, तो हम अपने परिवार के विश्वास को जीत सकेंगे।
करेक्ट।
दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें, छोटों को बहुत प्यार देके, बड़ों को सम्मान देके, हम इस विश्वास को जीत सकेंगे
जी। दीदी, अभी हमने ये जाना कि विश्वास और मिठास, अभी इसके बाद ऐसे कौन से वैल्यूज़ हैं जो हम चाहते तो है हमारे अंदर हो लेकिन होते नहीं हैं? ऐसी कोई चीज़ है जिसमें हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है जिससे हमारे रिश्ते बेहतर हो सके?
बड़ी छोटी सी बात है, हम दायरों में बन जाते हैं
जी।
ये मेरा कप है, ये मेरा कार्य है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरी टेबल है, ये मेरी है। तो जो मेरे के दायरे में है, मैंने उसे स्वच्छ किया, मैंने उस कमरे की भी सफाई की, मैंने अपनी टेबल जो स्टडी की है उसको मैनेज किया, मैंने अपनी डाइनिंग को मैनेज किया, मैंने अपने बेडरूम को मैनेज किया, बाकी बोला सारी जिम्मेवारी मेरी थोड़ी। अरे कोई करेगा जिसका होगा, है ना? नहीं, ये घर हमारा है। घर केवल ईंट से और सीमेंट से
नहीं बनता,
रंग रोगन से नहीं बनता। घर बनता है परस्पर सहयोग से, परस्पर शुभ भावना शुभकामना से। ये घर मेरा है, कोई भी आएगा तो जहाँ से प्रवेश करेगा, अगर प्रवेश द्वार पे उसे स्वच्छता नहीं मिलेगी तो कैसा लगेगा उसको
जी।
हमारे कमरे में आकर कहेगा भाई आपने अपना रूम बहुत मेंटेन किया हुआ है, मगर आंगन से होकर निकले तो बड़ा गंदा था। क्या कहेंगे आप? बहाना देंगे आज सर्वेंट नहीं आया, या उसको ये कहेंगे कि आज वो मदर जरा बीमार थी तो उन्होंने साफ नहीं किया। ये शोभा नहीं देता। ये घर हमारा है, अगर नहीं भी आया थोड़ा आगे बढ़कर हम कर लेते हैं। अगर हमारा है तो पड़ोस के कमरे को भी हम साफ कर सकते हैं, हमारे ही बेटे का है
जी,
हमारे ही मदर इन लॉ का है
जी,
हमारी माँ का है। तो जैसे जैसे अपनत्व का दायरा बढ़ता जाता है, सहयोग के हाथ बढ़ते जाते हैं, शुभ भावना शुभकामना बढ़ती जाती है। और अगर हम इस अपनत्व के दायरे को संकीर्ण कर लेते हैं तो रिश्तों की मिठास कम होने लगती है।
बिल्कुल,
थोड़ा थोड़ा सा बेहद में आ जाए, हदों को क्रॉस करना सीखे, मर्यादा में नहीं अपनत्व में।
बिल्कुल दीदी, अभी जब हम बात कर रहे हैं अपनत्व की, अपनत्व अपने आप में अगर देखे तो वैसे अपने परिवार के अंदर तो मैं कर लूँ, लेकिन ऑफिस जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलाइज होता है, तो ऐसे एरिया में अपनत्व की भावना कैसे लेकर के आए, या फिर अगर मैं एज ए लीडर बोलूँ तो मैं एज ए लीडर कैसे पूरे के पूरे ऑफिस में अपनत्व की भावना को बढ़ा सकूँ, ये अगर आप मुझे बता सकें।
ऑफिस भी हमारा एक परिवार है
जी,
भले ही हम वहाँ पर वर्कआउट करते हैं, कॉमर्शियल फील्ड है, लेकिन वहाँ भी एक व्यवहार की शैली होती है
जी।
और उस व्यवहार की शैली के अंदर अगर मानवता का मिठास घोल दे, अगर उसको आत्मीयता के दायरे में ले आए और दूसरों के दुख दर्द में शरीक हो, हमारे साथ का कुलीग उसके सर में बहुत दर्द है, फाइलों का बोझ बहुत है, अगर मेरा काम संपन्न हो गया और मैंने उस पड़ोसी के सर दर्द की चिंता की, दो फाइलें उसकी कम करा के मैंने उसको निपटा दिया, कितना शुक्रगुजार होगा वो।
बिल्कुल,
कितना शुक्रगुजार होगा। आपने सहयोग के हाथ बढ़ाए, किसी का उदास चेहरा देखकर पूछ लिया कुछ हुआ है क्या, मे आई हेल्प यू,
करेक्ट,
उसके मन में आपके प्रति कितना रिगार्ड होगा
जी।
तो सहयोग की भाषा बड़ी बड़ी खाइयों को पाट देती है।
बिल्कुल,
संबंधों के अंदर मिठास आ जाती है। अगर हम उससे उदासीन होते हैं, मुझे क्या लेना देना, वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, नहीं, थोड़ा सा शेयर करने से अगर हम उसकी मुस्कुराहट ला सकते हैं चेहरे पे, इससे अच्छा क्या काम होगा।
शेयर एंड केयर, ट्रू,
या शेयर एंड केयर,
ट्रू,
थोड़ी सी हमने उसके साथ जो वार्ता की तो उसे लगा आप आत्मीय हैं।
बिल्कुल,
आप केवल यंत्र चालित पुर्जे नहीं हैं, आप मानव हैं, आपने मानवता के नाते सहृदयता जताई, न चाहते हुए भी वो आपके करीब आ जाएगा
जी।
आज आपने उसका दुख दर्द पूछा है, कल वो आपका दुख दर्द पूछेगा। अगर मैं सही हूं तो मैं कहना चाहूंगी कि जब हमने परस्पर संबंधों को इस तरह रखना बंद कर दिया तो आज फैक्ट्रियों ने HRD रखने शुरू कर दिए। HRD मैनेजर की जरूरत तब पड़ी है जब हमारी परस्पर की मानवता और सहृदयता कम होने लगी।
ट्रू, बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने।
HRD का कुछ और काम नहीं होता,
सिर्फ रिलेशन
हेलो और हाय, रिलेशनशिप को बरकरार रखना।
बिल्कुल,
वो ये अच्छी तरह जो अच्छा HRD है वो ये जानना चाहता है कल आपके घर चूल्हा जला था, बच्चों ने खाना खाया, आपके घर कोई बीमार तो नहीं, आपके घर के बच्चों की फीस जमा हो गई। कैसे जानता है वो, हर चेहरे की शिकन पड़ता है।
पर दीदी उनका काम डिसिप्लिन लाना भी होता है। सिर्फ HR की अगर मैं बात करूँ, HR मैनेजर की, तो वो डिसिप्लिन को भी उतना ही तवज्जो देते हैं। तो ये किस हद तक हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे वैल्यूज़ में कि डिसिप्लिन लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, रिलेशनशिप्स के अंदर भी, ऑफिस में हो चाहे घर में हो।
देखिए मैंने क्या कहा, अपनत्व का दायरा बढ़ाइए।
करेक्ट,
कहाँ, सहयोग करने में, लेकिन मर्यादा में नहीं।
अच्छा,
मर्यादा को जितना कायम रखेंगे आप, डिसिप्लिन मेंटेन होता रहेगा।
ओके,
इतना ज़्यादा किसी के प्रति फैमिलियर ना हो जाए
जी
कि वहाँ जिस तरह पौधे में अधिक पानी डाल देने पे उस पौधे की जड़ें गलने लगती हैं।
बिल्कुल,
हम बहुत ज़्यादा होमली टॉक करने लग जाएं, ऑफिस में घर को ले आए
तो फिर वही है,
तो वहाँ पर डिसिप्लिन टूट जाएगा।
बिल्कुल,
हम बहुत ज्यादा शुष्क हो जाएं, एकदम सूखे हो जाएं, तो वहां आत्मीयता का पौधा सूखने लगेगा।
करेक्ट,
तो मर्यादाओं को बनाए रखते हुए हम आत्मीयता बरते हैं।
बिल्कुल,
किसी को वो इजाजत न दें कि हमारे वैयक्तिक संबंधों में झांकने की कोशिश करें
जी।
लेकिन मानवता के नाते अगर किसी को चोट लग गई है ऑफिस आते समय, थोड़ी सी फर्स्ट एड तो कर सकते हैं।
बिल्कुल,
अगर कोई बहुत उदास है तो हम उसे कुछ हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई काम के बोझ से दबा हुआ है, कल की सारी रात फीवर है, वो नहीं सोया, तो हम उसके काम में थोड़ा सा हाथ तो बटा सकते हैं।
बिल्कुल,
लेकिन मर्यादा तोड़ के नहीं, हमारे पास जो जॉब है टेबल पे हम उसे पूरा करके उसको मदद कर देते हैं
जी।
अगर हमने अपना काम छोड़ दिया अगले की मदद की तो कल वही स्थिति हमारी भी होने वाली है।
ट्रू, एक टाइम तो ऐसा आता ही है, जैसा जरूरी नहीं है कि हर समय एक समान हो, आपकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आएगा जिस तरह मेरी जिंदगी में आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा दीदी। कई बार ऐसा होता है कि बूढ़ों के, खास करके आज जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी ज़िंदगी में जब वो जिस पायदान पे आ जाते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके बीच में जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा आने लगता है। इस जनरेशन गैप को कैसे भरा जाए, क्योंकि आज की हमारी जो सारी ऑडियंस है वो जानती है और वो सफ़र कर रही है कि किस तरह से इस जनरेशन गैप को हम भरें, क्या करें।
एक्चुअली अगर मैं इसको सनातन संस्कृति के दृष्टिकोण से बताना चाहूँ, बहुत ही मनोवैज्ञानिक हमारे यहाँ व्यवस्था दी गई है
जी।
परिवारों में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब घर में पुत्रवधू ले आते हैं तो उनको अपनी सत्ता सौंपकर उन्हें जीवन के सांध्यकाल का स्वागत करना चाहिए
जी।
हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, 25 वर्ष युवावस्था, 25 वर्ष अध्ययन अध्यापन के लिए और युवावस्था को अपनी ब्रह्मचर्य में जीवन शैली के साथ बहुत कुछ सीखने के लिए, 25 वर्ष वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए, सारी जिम्मेवारियां मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण से उऋण हो जाने का वक्त, और उसके बाद 25 वर्ष वानप्रस्थ के लिए
जी,
25 वर्ष लास्ट सन्यास, प्रभु चिंतन और उस स्मृति के लिए, ये हमारी वैदिक परंपरा है। आज का मानव चूंकि 100 ईयर्स एक्यूरेट नहीं जीता
जी,
ये जरूरी नहीं है कि वो अपने जीवन के 100 साल व्यतीत करेगा ही
जी।
तो हमें उस जगह कुछ एडजस्टमेंट, कुछ समझौते करने पड़ते हैं और हमने किए। पहले जीवन में था निश्चित 25 वर्ष के बाद आप विवाह करेंगे। आज क्या होता है, बच्चे 18 साल की होती है, माँ बाप खोजना शुरू कर देते हैं बच्चे के हाथ पीले करने, कहीं शादी करनी। आपने समझौता किया, आप 25 से नीचे उतर आए, 30-35 तक दोनों दो दो बच्चों के, तीन तीन बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं। 25 साल हमें अपने उत्तरदायित्वों से पूर्ण होने के लिए
जी
हमारी वैदिक परंपरा ने दिए
जी।
वानप्रस्थ का जीवन दिया, पूर्व अभ्यास, संन्यास
जी,
परमात्म स्मृति। तो जीवन के सांध्यकाल में ही हम पूर्वाभ्यास कर लें
जी।
तो ये है समझौते की भाषा जी। हमने समझौते की भाषा का इस्तेमाल तो किया जीवन में, 25 वर्ष से पहले विवाह कर दिया, 35 साल तक माता पिता बन गए वो, 50 साल तक हम बुजुर्ग होने लग जाते हैं।
बिल्कुल,
आगे लगने लगता है कि अब तो बुढ़ापा आ गया, सांध्यकाल शुरू हो गया, लेकिन हम वानप्रस्थ ही नहीं बनते। हमारी पूर्व परंपराओं में राजा भी युवराज से बेटे को राजा बनाकर वानप्रस्थ ले जाता था, आज से तुम संभालो, अब हम प्रभु स्मृति में रहेंगे।
बिल्कुल,
तो हमारे यहाँ गृहस्थ में ऐसा नहीं होता, व्यक्ति गृहस्थ में ही रहता है।
बिल्कुल,
रिटायरमेंट लग जाने के बाद बाहर के ड्राइंग रूम पे पूरा कब्जा हो जाता है।
बिल्कुल,
अब यहाँ पर जनरेशन गैप आता है। यहाँ पर जनरेशन गैप आता है।
बिल्कुल,
जो चाहे, मुझे ऑफिस जाने से पहले ठीक 8:30 बजे मुझे मिलती थी, अब मुझे नहीं मिलती, मेरे बच्चे को मिलती है, क्योंकि उसे ऑफिस जाना है।
बिल्कुल,
और उतनी देर में मेरे मन में अनेकों उतार चढ़ाव आ जाते हैं, अरे अब क्यों पूछेंगे, अब मैं बुजुर्ग जो हो गया हूँ। ऐसा होता है, मन में निराशा के बादल घुमड़ने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, आज के बच्चे कुछ फरमाइश करते हैं, भले हम रिटायर नहीं हुए, बच्चा आज के आधुनिक युग के साथ कहता है कि मुझे आज ही बाइक चाहिए। मेरे सारे फ्रेंड्स बाइक से आते हैं, माँ बाप कहते हैं अरे हम इंटर तक पढ़े, हमको बाइक नहीं दिलाई हमारे फादर ने, हमें ग्रेजुएशन में मिली, तुम हाई स्कूल में ही बाइक मांग रहे, नहीं मिलेगी। बच्चा कहता है दिला दो ना, फादर डांट देते हैं। माँ कहती है शांत रहो, बच्चे को भी कहती है शांत रहो, फादर को भी कहती है शांत रहो, अगर समझदार है तो दोनों में समझौता करा देती है। बच्चा आने वाला कल है, फादर गुजरा हुआ कल है, माँ बाप को समझाती है आपके जमाने में ऐसा नहीं होता था, दिला दो ना, आखिर कमा किसके लिए रहे हो, बच्चा तो अपना ही है ना। बच्चे को समझाती है आज नहीं कल मिल जाएगी, शांत रहो, और कल तक बच्चे को बाइक दिलवा देती है।
बिल्कुल,
अगले दिन तक दिलवा देती है। तो बीच में जो समझौता, ये एक बहुत बड़ी पावर है, हारमोनी कह लीजिए, समन्वय कह लीजिए, समझौता कह लीजिए, परिवार के अंदर जीने वाली नारी जिसे हम माँ कहें,
सबसे ज्यादा वही सफर करती है,
वो सफर करती है और समझदार है, तो दोनों पीढ़ियों के बीच समझौता कराती चलती है।
वो तो है, बिल्कुल।
तो इस तरीके से जो दूरियां बढ़ती हैं वो घट जाती है।
बिल्कुल ठीक कहा।
और अगर माँ समझदार नहीं, माँ की भूमिका आज की है, वो गुजरे हुए कल और आने वाले कल में समझौता कराती है, वो आज की भूमिका निभाती है। और अगर जननी समझदार नहीं है तो फिर दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जनरेशन गैप ना हो तो दोनों के बीच एक समझदार नारी समझौता कराती चली जाती।
कितनी बड़ी जिम्मेवारी है उन पर, सच में।
हर परिस्थितियों के साथ अगर समझौता कोई कराता है तो वो नारी है।
बहुत अच्छा दीदी, बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी जो नारी है ये एक शक्ति है, जो भगवान भी कहता है कि नारी शक्ति, ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रिश्तों को लेना चाहती हूँ। रिश्तों में अभी आज वैसे तो भले मनमुटाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन मिठास भी कहीं ना कहीं रिश्तों में ही है। इसीलिए आज हम अपने रिश्तों को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मिठास की अगर बात करें तो मिठास को बढ़ाए कैसे? अभी तो आपने कह दिया कि भले हमें मिठास रखना है, ये तो मैं समझ गई, लेकिन बढ़ाए कैसे? कोई प्रैक्टिकल तरीका है जिससे मेरे रिश्ते में जो भी कोई भी झगड़े हो तो वो फट से सुलझ जाए? ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं फट से चीज़ों को सही जगह पे लेके आ सकूं?
देखिए, परस्पर सम्मान।
ओके।
परस्पर सम्मान देना एक बहुत बड़ी कला है
जी।
जैसे अभी चर्चा होती है ना कि बच्चे भी सम्मान चाहते
जी, बिल्कुल।
अगर आप बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देते तो कर्टन उठा के देखते हैं ड्राइंग रूम में कौन बैठा है, फिर कर्टन के पीछे छुप जाते हैं।
बिल्कुल ठीक कहा।
सामने नहीं आते वो, सामने तभी आते हैं जब आप बड़े प्यार से बुलाते हैं। तब वो सामने आते हैं कि बेटा अंकल जी आए हैं, चलो और मिलो अंकल जी से। तो जब आप उसे आदर सहित बुलाते हैं तो वो आता है। कई बार क्या होता है, हम उसका वही इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, पोएम सुनाओ, किस स्कूल में पढ़ते हो, क्या क्लास करते हो, कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो सवालों से घबरा के भाग खड़ा होता है।
बिल्कुल।
लेकिन हम उसकी पीठ ठोकते हुए, उससे चर्चा करते हुए धीरे धीरे उसे ले आते हैं इस लेवल पे, तो बड़े खुश होकर वो सुनाता है कि आज हम क्या पढ़ के आए हैं।
बिल्कुल।
उसे ये ना लगे कि आप उसकी परीक्षा ले रहे हैं।
सही।
इसी तरह से हम अपने घर के अन्य सदस्यों के प्रति जब सम्मान रखते हैं तो अपनी पूरी क्वालिटी को निखार के हमारे सामने रख देते हैं।
बिल्कुल।
अगर हमारे एटीट्यूड में कहीं एक ऐसा नज़र आने लगता है कि आप बॉस हैं और मुझे आप अपने डायरेक्शन पे चलाना चाह रहे हैं, तो उन्हीं रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है।
बिल्कुल।
क्योंकि बॉसेज उनका रिश्ता ऑफिस में तो काम करता है मगर घर में नहीं। जब उससे निकल कर हम घर में आते हैं तो यहाँ आप बॉस नहीं हैं, यहाँ केवल पति है, यहाँ केवल पिता है, यहाँ केवल भाई है, यहाँ केवल माँ है। तो सारे दिन के बाद जब परस्पर मिलते हैं तो हम एक दो को स्नेह और सम्मान दें, बहुत जल्दी हम अपने रिश्तों को मजबूती के साथ कायम कर सकते हैं। एक छोटी सी बात उदाहरण के तौर पे
जी।
एक प्रोफेसर ने एक जार लाके टेबल पे रखा बच्चों के सामने, उसे छोटी छोटी बॉल से भर दिया और बच्चों से पूछा कि बेटा इनमें कुछ डालने की जगह बची, जार भर गया, इट्स ओके? बच्चे बोले यस सर, अब तो कहीं कोई जगह नहीं, जार पूरा हो गया है। तो प्रोफेसर हंसे और छोटे छोटे उन्होंने पत्थर उसमें डाले। तो बॉल्स के बाद जो जगह थी वो उन पत्थरों ने घेर ली। फिर उन्होंने पूछा कि कुछ और बचा या सब पूरा हो गया? बोले यस सर पूरा हो गया। बोले नहीं अभी खाली है। थोड़ी सी बालू लेके उन्होंने उसमें डाली, बालू ने भी अपनी जगह बना ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा पूरा हुआ? बच्चों ने कहा सर अब तो कुछ भी नहीं आ सकता। बोले नहीं अभी इसमें और जगह है। और उन्होंने एक जग पानी मंगा के उसमें पानी डाला, पानी भी समा गया।
क्या बात है।
लाइक दैट, विश्वास, सहयोग, प्रेम, विनय, सम्मान, इसी तरह उस जार को भरते चले जाते हैं। हमारा जो जिंदगी का जार है, विश्वास उसकी नींव बनता है, विनय उसमें छोटे छोटे स्थानों को जो खाली है भर देता है।
विनय अर्थात
विनम्रता।
अच्छा, विनम्रता।
विनम्रता
बिल्कुल बिल्कुल।
हमारे एटीट्यूड्स में जब तक सॉफ्टनेस नहीं होती
जी,
विनय नहीं होती, तब तक कभी दूसरे को उसकी खुशबू नहीं आती।
बिल्कुल।
हम कुछ भी बोलेंगे तो उसे लगेगा बहुत मगरूर है, बहुत अहम है
जी।
तो विनम्रता भी रिश्तों में मिठास लाती है। तो बॉस की तरह हमने डाला, बॉस विश्वास का काम करते हैं। विनम्रता वो संवाद है जो संबंधों को करीब लाते हैं
जी,
है ना, जिसको हम कहते हैं झुकना। थोड़ा सा झुक के हम आगे बढ़ लिए तो वो भी थोड़ा आगे बढ़ लिए, ब्रिज तैयार हो गया।
तो आप कहना चाह रहे हैं अगर मुझे किसी के साथ मन मुटाव है, किसी के साथ झगड़े चल रहे हैं बाय एनी चांस, तो अगर मैं थोड़ा सा झुक करके सामने से जाऊं तो वो बदल जाएंगे।
सो नाउ ये जो कल्चर है, सॉरी
या सॉरी
मगर तहे दिल से हो,
हाँ
है ना,
वो तो जब महसूस होता है
विनम्रता से सॉरी कर लेते
जी,
तो क्या होता है छोटे छोटे संवाद, वो झुकना नहीं है, आपने अगले को भी झुका लिया। हम सबको शिक्षा दी जाती है कि झुक के झुकाना, क्षमा बहुत बड़ी ताकत है। उसके बाद अगर आपने उसमें थोड़ा सा क्या किया, समझौते की बालू डाल दी, एडजस्टमेंट के लिए आपने बालू डाल दी, फिर उसमें प्रेम का जल डाल दिया, सब तो समा गया जिंदगी में।
सही बात है,
जिंदगी के जार में सब चीजें चाहिए, रिश्ते मिठास से भरते चले जाएंगे।
वेरी नाइस। तो अगर रिश्तों की मिठास को बढ़ाना है तो उसके अंदर में विश्वास रूपी नींव डालना होगा और साथ ही साथ थोड़ा सा और झुकना होगा,
विनम्रता
लानी होगी। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। आज हमने बहुत सारी बातें सीखी जिसमें सबसे खूबसूरत बात ये सीखी कि अगर हमें अपने अंदर में विश्वास रूपी नींव अगर हम रखेंगे हर रिश्ते के अंदर, तो हमारे सारे रिश्ते सुलझ जाएंगे और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों आज हमने क्या जाना, रिश्ते ये वैसे तो हम सोचते थे कि एक बहुत बड़ा टास्क है उसके साथ में सही तरीके से संयम में रहना, लेकिन इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना हम आज तक इसे बनाकर रखे थे। रिश्तों के अंदर अगर विश्वास हो, मिठास हो और थोड़ा सा झुकाव हो, अगर आप थोड़ा सा झुक करके किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए झुकेगा और एक कदम और आगे बढ़ेगा। और अगर आपको इन दोनों के बीच के टकराव को ख़त्म करना है तो सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रसन्नता। आप प्रसन्न होकर उनके साथ में मिलिए, फिर आप देखिएगा कि सामने वाला व्यक्ति भी आपको प्रसन्नचित होकर के ही मिलेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति।